आगे सबक देखिए भाई, फसलुन व नसारा बनी तगलीब युखदु मिन अमवालिहिम ज़िअफु मा युखदु मिन अल मुस्लिमीन मिन अज़्ज़कात لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم. भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने जिम्मियों से मुताल्लिक कुछ अहकाम जिक्र फरमाए थे। साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया कि जिम्मी जो हैं दारुल इस्लाम के अंदर अपनी नई इबादतगाह नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला खिसा फिल इस्लामी वला कनीसता, यानी इस्लाम में ना मर्द बनाना भी नहीं है और इसी तरह नया कनीसा बनाना भी नहीं है। फिर मैंने जिक्र किया था कि हदीस के अंदर यह खिस्सा और कनीसा को जमा किया गया तो इनमें क्या मुनासबत है, क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों को जमा फरमाया। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह खिस्सा जो है वो इंसान के अंदर एक किस्म का ज़ौफ है, इसी तरह दारुल इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों का अपनी नई इबादतगाह बनाना यह भी एक किस्म का ज़ौफ है। जबकि बाज़ उलमा ने यह जवाब भी दिया कि मुमकिन है किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के अंदर खिस्सा का हुक्म दरियाफ्त किया हो और इत्तेफाकन उसी वक्त किसी दूसरे ने इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों की इबादतगाह बनाने के बारे में पूछा हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों को इकट्ठा जवाब दिया और फरमाया ला खिसा अफिल इस्लामी वला कनीसता। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर इन गैर मुस्लिमों के पुराने इबादत खाने गिर गए, उनकी इमारत गिर गई, तो फिर उसको वो दोबारा तामीर कर सकते हैं क्योंकि इमारत तो हमेशा के लिए बाकी नहीं रहती और नीज जब इमाम ने इनसे अहदे जिम्मा किया है तो उसने गोया इनको इजाजत दी है इन बने हुए इबादत खानों की दोबारा तामीर की। और इसी तरह हुक्म है सौमा का भी। मैंने बतलाया था सौमा वो छोटा सा कमरा जो राहिब बना लेते थे अपनी इबादत के लिए ताकि उसके अंदर लोगों से अलग थलग रहकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें। तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि जो सौमा है ये भी गैर मुस्लिमों की इबादतगाह के दर्जे में है, लिहाजा दारुल इस्लाम के अंदर नया सौमा बनाने की इजाजत भी नहीं होगी। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये जो हुक्म है कि गैर मुस्लिम अपनी नई इबादतगाह नहीं बना सकते, ये हुक्म शहरों के साथ खास है, देहात के अंदर ये हुक्म नहीं है। वजह यह कि शहरों के अंदर इस्लामी शाइर होते हैं, लिहाजा उन शाइर के मुतजाद चीजों की इजाजत नहीं दी जाएगी, उन शाइर के मुकाबले में जो चीजें हैं उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैंने बताया था शाइर जमा है शाइरा की और शाइरा जो है वह अलामत को कहते हैं, तो शाइर इस्लाम से मुराद वो इबादत हैं जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है बतौरे इस्लाम की अलामत के, जैसे बाजमात नमाज अदा की जाती है इसके जरिए मुसलमान और काफिर में फर्क हो जाता है, जैसे जुम्मा की नमाजें हैं या जैसे अजान है या जैसे ईदैन की नमाजें हैं या इसी तरह हुदूद कायम की जाती हैं, तो ये सारी जो हैं अलामतें हैं इस्लाम की, इसके जरिए मुसलमान की पहचान होती है, मुसलमान गैर मुस्लिम से जुदा हो जाता है। तो लिहाजा शहरों के अंदर चूंकि शाइर इस्लाम हैं और ये जो गैर मुस्लिमों के इबादत खाने हैं ये तो शाइर इस्लाम के मुकाबिल हैं, उनके मुतजाद हैं, लिहाजा शहरों में इनके बनाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि देहात में इनके बनाने की इजाजत होगी, देहात में वो अपना नया इबादत खाना भी बना सकते हैं भाई। और ये जो जिक्र हुआ कि देहात के अंदर गैर मुस्लिम अपनी नई इबादतगाह बना सकते हैं, कहते हैं ये रिवायत है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से, उन्होंने कूफा की बस्तियों के बारे में और कूफा के देहात के बारे में ये जिक्र फरमाया था। वजह यह कि कूफा के आसपास की बस्तियों के अंदर जिम्मियों की कसरत थी, तो इमाम साहब ने उन देहात के अंदर और उन बस्तियों के अंदर उनके लिए नए इबादत खाने बनाने को जायज करार दिया। जबकि इमाम सरखसी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि हमारी बस्तियों के अंदर भी जिम्मियों को नए इबादत खाने बनाने से मना किया जाएगा, क्योंकि हमारी बस्तियों के अंदर भी बाज़ इस्लामी शाइर मौजूद हैं भाई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि सरजमीन अरब के अंदर गैर मुस्लिमों को अपनी नए इबादतगाह बनाने की इजाजत नहीं होगी, ना शहरों में और ना बस्तियों में, इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यजतमियु दीनान फी जजीरतिल अरब, जजीरा अरब के अंदर दो दीन जमा नहीं हो सकते। और फिर साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाया कि जिम्मियों को पाबंद किया जाएगा कि वह मुसलमानों से अपना लिबास और अपनी वजाकता, अपनी सवारियां, सवारियों की जीने और इसी तरह अपनी टोपियां जो हैं वो मुसलमानों से अलग थलग रखें, ताकि उनको देखते ही पहचान लिया जाए कि ये गैर मुस्लिम हैं। चुनांचे जिम्मियों को घोड़ों पर सवार होने की इजाजत नहीं होगी, इनको असलहा उठाकर चलने और असलहा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, और इसी तरह ये सवारी पर जीन नहीं रख सकते, बल्कि इनको पालान इस्तेमाल करने का पाबंद बनाया जाएगा भाई। और गैर मुस्लिमों को इन चीजों का इसलिए पाबंद किया जाएगा ताकि उन पर जिल्लत को जाहिर किया जा सके और ताकि कमजोर मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो सके, क्योंकि अगर इन जिम्मियों को मुअज्जज लोगों की तरह रहने की इजाजत दी जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो वो मुसलमान जो कमजोर ईमान वाले हैं वो कहीं इनकी तरह माइल ना हो जाए कि ये गैर मुस्लिम तो बड़ी नियामतों के अंदर हैं, लिहाजा इन जिम्मियों को मुअज्जज लोगों के तौर तरीके अपनाने की इजाजत नहीं होगी भाई। और नीज इसलिए क्योंकि शरीयत ने मुसलमान के इकराम का हुक्म दिया है, मुसलमान की इज्जत करने का हुक्म दिया है और जिम्मी की इहानत करने का हुक्म दिया है, यानी जिम्मी की इहानत माना यह है कि उनके साथ मुअज्जज लोगों वाला बर्ताव नहीं किया जाएगा भाई, और इन पर सलाम की इब्तिदा भी मुसलमान नहीं करेगा और नीज इन पर रास्तों को तंग किया जाएगा, यानी अगर मुसलमान रास्ते में आ रहे हैं तो जिम्मी के लिए रास्ता खुला नहीं किया जाएगा बल्कि जिम्मी मुसलमान के लिए रास्ता खुला करेगा और ये खुद एक तरफ होकर गुजरेगा भाई। तो ये अलामतें जरूरी हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई लाइल्मी में इनके साथ मुसलमानों वाला मामला कर ले, और मुसलमानों वाला मामला करना तो इनके साथ जायज नहीं है भाई। और अलामत भी जिक्र फरमाई साहिब हिदायत ने कि इनको पाबंद किया जाएगा कि ये अपनी कमर पर ऊन का बना हुआ एक मोटा धागा बांध कर रखें भाई, जो कम अज कम उंगली के बकदर मोटा हो भाई। उनको रेशम का जुन्नार पहनने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि रेशम का जुन्नार यानी वो जो धागा उन्होंने कमर पर बांधा है अगर वो रेशम का है, जबरदस्त बना हुआ है, तो ये तो गोया मुसलमानों से बेरुखी और बेवफाई की जा रही है, इसलिए क्योंकि दोस्त के दुश्मन के साथ भी अच्छा सुलूक करना वो दरअसल अपने दोस्त के साथ बेरुखी और बेवफाई है भाई। ये जिम्मी ये तो अल्लाह के और मुसलमानों के दुश्मन हैं, लिहाजा इनके साथ इज्जत वाला बर्ताव करना वो मुसलमानों के साथ बेरुखी और बेवफाई है भाई। और नीज इनकी औरतें भी हमारी औरतों से मुमताज नजर आनी चाहिए, और नीज इनके घरों पर भी ऐसी अलामतें लगाई जाएंगी जिससे पता चल जाए कि ये गैर मुस्लिम हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कोई मांगने वाला इनके दरवाजे पर खड़ा होकर इनके लिए मगफिरत की दुआ करे, हालांकि ये तो अल्लाह के दुश्मन हैं, इनके लिए तो मगफिरत की दुआ जायज नहीं है भाई। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि फुकहा फरमाते हैं कि ज्यादा मुनासिब यह है कि इनको सवारी की इजाजत ही ना दी जाए, और अगर किसी जरूरत की वजह से इनको सवार होना पड़े तो इस सूरत के अंदर भी ये जीन वगैरह को अपनी सवारी पर नहीं रख सकते बल्कि पालान वगैरह इस्तेमाल करेंगे। मैंने बतलाया पालान वो मोटा कपड़ा वगैरह जो गधे के ऊपर डाला जाता है उस पर बैठने के लिए भाई, तो इस किस्म की जीन वो इस्तेमाल करेंगे, और नीज उनको मुअज्जज लोगों की तरह लिबास पहनने की इजाजत भी नहीं होगी भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाया कि अगर इन जिम्मियों में से किसी ने जिजिया देने से इनकार कर दिया, या उसने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गाली दी, या उसने किसी मुसलमान औरत से जिना कर लिया, तो इन सूरतों के अंदर भी हम ये नहीं कहेंगे कि अहद-ए-जिम्मा टूट गया, इसलिए क्योंकि अगर अहदे जिम्मा टूट जाए फिर तो जिम्मी मुर्तद के हुक्म में हो जाएगा, फिर तो इसका कत्ल जायज हो जाएगा। भाई तो ये चीजें जो जिक्र हुई ये जुर्म तो हैं, इनकी वजह से इसको सजा तो मिलेगी लेकिन इन चीजों की वजह से अहदे जिम्मा के टूटने का हुक्म नहीं लगाया जाएगा भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना यह अहदे जिम्मा को तोड़ना है, इसलिए क्योंकि अगर कोई मुसलमान ऐसा करे तो उसका ईमान टूट जाता है। तो यह जो अहदे जिम्मा है यह तो इस्लाम ही का नाइब है, तो जब असल यानी इस्लाम इस गाली देने की वजह से टूट जाता है और खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से यह जो अमान इस जिम्मी को हासिल है तो गाली देने की वजह से यह अहदे अमान भी टूट जाएगा, अहदे जिम्मा खत्म हो जाएगा भाई। जबकि हम कहते हैं नहीं, यह गाली देने की वजह से अहदे जिम्मा नहीं टूटेगा, इसलिए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना यह इसने कुफर किया है और जिस वक्त इसे अहदे जिम्मा किया गया था उस वक्त भी यह काफिर था, तो वह कुफर जो इब्तिदाए अहदे जिम्मा के साथ मिला हुआ था वो अहदे जिम्मा के लिए मान्य न बना, तो बाद में गाली देने की वजह से जो कुफर पेश आया है वो भी अहदे जिम्मा को खत्म नहीं करेगा भाई। और उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि जिम्मी जो है वो अगर दारुल हर वालों से जाकर मिल जाएं या किसी जगह पर कब्जा करकर मुसलमानों से लड़ाई शुरू कर दें तो इस सूरत में अहदे जिम्मा टूट जाएगा, इसलिए क्योंकि अब अहदे जिम्मा का कोई फायदा ही ना रहा। ये जो अहदे जिम्मा इन जिम्मियों से किया गया था वो इनके जंग के शर को दूर करने के लिए किया गया था, वजह यह कि ये तो हरबी थे भाई, लेकिन हमने इनसे अहदे जिम्मा कर लिया ताकि इनकी जंग का शर दूर हो जाए, तो जब ये जिम्मी बन जाएंगे ये मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे, लेकिन अब तो ये दारुल हर्ब वालों से जाकर मिल गए हैं या हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं तो अब अहदे जिम्मा को बाकी रखने का कोई फायदा ही नहीं, लिहाजा इस सूरत में अहदे जिम्मा टूट जाएगा। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जब जिम्मी अहदे जिम्मा को तोड़ दे तो इस सूरत में वह मुर्तद के दर्जे में हो जाता है, यानी जिस तरह मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला जाए और काजी उसके जाने का फैसला कर दे तो इसको उसकी मौत शुमार किया जाता है और मौत के अहकाम जारी हो जाते हैं। तवज्जो है, मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला गया और काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया तो ये उस मुर्तद की मौत के हुक्म में है और मौत के अहकाम जारी हो जाएंगे और मुर्तद का वो जो माल दारुल इस्लाम के अंदर है वो उसके वारिसों की तरह मुंतकिल हो जाएगा भाई। इसी तरह ये जिम्मी जो है ये भी जब दारुल हर्ब वालों से जाकर मिल गया है तो ये भी मौत के हुक्म में है, लिहाजा इसकी वजह से यहां पर भी वरासत के अहकाम जारी होंगे और इस जिम्मी का अगर कोई माल यहां पर दारुल इस्लाम में मौजूद है तो इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और नीज अगर इसकी कोई जिम्मिया बीवी यहां दारुल इस्लाम के अंदर है तो उससे भी इसकी बैनूनत और जुदाई वाकई हो जाएगी दारुल हर्ब जाने की वजह से, इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मियां बीवी का दार अलग अलग हो हकीकतन भी और हुक्मन भी, तो इसकी वजह से दोनों में जुदाई आ जाती है। हकीकतन भी यहां दोनों का दार अलग अलग है, बीवी जो है वह दारुल इस्लाम में है और खावन जो है वह दारुल हर्ब वालों से जा मिला है, तो हकीकतन भी दार अलग अलग है और हुक्मन भी दार अलग अलग हैं कि खावंद का अब वहीं दारुल हर्ब में ही रहने का इरादा है, तो इसकी वजह से बीवी भी इससे जुदा हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और मैंने यह भी बतलाया था कि मुर्तद या जिम्मी जब दारुल हर्ब वालों से जाकर मिल जाएं तो फिर इस सूरत के अंदर इन पर मौत का हुक्म जारी किया जाता है, वजह यह कि यह मुर्दों से जाकर मिल गए हैं, मुर्दों से कि दारुल हर्ब वाले जो हैं ये मुर्दों के हुक्म में हैं, यानी जिस तरह मुर्दे पर इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं किए जा सकते क्योंकि वो मर चुका है, इसी तरह दारुल हर्ब वाले जो हैं उन पर भी हमें विलायत हासिल नहीं है तो उन पर भी हम इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं कर सकते, तो दारुल हर्ब वाले भी मुर्दों की तरह है। और ये मुर्तद या जिम्मी दारुल हर्ब वालों से जा मिले हैं तो ये जब मुर्दों के साथ मिल गए तो ये भी मुर्दों के हुक्म में हो गए, तो इसलिए मुर्दों वाले अहकाम जारी होंगे। तो लिहाजा ये जिम्मी जिसने अहदे जिम्मा को तोड़ा है ये मुर्तद के हुक्म में है, यानी जिस तरह मुर्तद पर दारुल हर्ब जाने की वजह से मौत का हुक्म लगाया जाता है इस जिम्मी पर भी मौत का हुक्म लगाया जाएगा। इसी तरह अगर दारुल हर्ब पर मुसलमान कब्जा कर लें तो वो मुर्तद जो वहां भाग गया था उसका सारा माल माले फै माले गनीमत शुमार होगा। इसी तरह यह जिम्मी अगर अपने साथ कुछ माल ले गया था और दारुल हर्ब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो इस जिम्मी का माल जो है वह भी माले फै यानी माले गनीमत शुमार होगा। अलबत्ता एक फर्क है कि जिम्मी जो है उसको अगर कैदी बना लिया जाए तो उसको गुलाम बनाना जायज है, उसको कत्ल करना भी जायज और गुलाम बनाना भी जायज, लेकिन अगर मुर्तद जो है उसको कैदी बनाया गया तो उसको गुलाम बनाना जायज नहीं, उससे सिर्फ इस्लाम ही कबूल किया जाएगा और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन व नसारा बनी तगलिब युखदु मिन अमवालिहिम ज़िअफु मा युखदु मिन अलमुस्लिमीन मिन अज़्ज़कात। भाई इस फसल के अंदर साहिब हिदाया बनु तगलिब के ईसाइयों के अहकाम जिक्र फरमाएंगे। बनु तगलिब ये अरब का एक कबीला था, ईसाई थे और इनके अहकाम और जिम्मियों से अलग हैं। इनके अहकाम और जिम्मियों से अलग हैं तो इनके अहकाम को साहिब हिदाया अलग फसल में जिक्र फरमा रहे हैं। याद रखो ये बनु तगलिब ये अरबों का एक कबीला था, ईसाई थे और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने में मुसलमान जब इलाकों को फतह कर रहे थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इनको भी जिजिये की तरफ बुलाया कि जिजिया अदा कर दो तो तुम्हें अमान हासिल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम भी अरब हैं तुम्हारी तरह, ये हमारे लिए बड़ी ही आर की बात होगी कि हम किसी को जिजिया अदा करें, लिहाजा अगर तुम हमसे वही चीज लो जो तुम मुसलमानों से वसूल करते हो, यानी जिस तरह और मुसलमान जकात अदा करते हैं इसी तरह अगर हमसे जकात लेते हैं तो ये तो हमें कबूल है, लेकिन जिजिया देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने शुरू में इनकार कर दिया कि मैं मुशरिक से जकात नहीं ले सकता, लेकिन फिर बाद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को मशवरा दिया कि ये लोग बड़े जंगजू लोग हैं और ये अरब हैं और ये जिजिये से बे इंतहा नफरत करते हैं, ये इनके लिए बहुत ताने की बात है, लिहाजा आप इनसे जिजिया ही लीजिए, बेशक ये उसको सदके का नाम दे दें, तो आप इनसे जिजिया वसूल कीजिए बेशक ये उसको सदके का नाम दें। तो चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और फिर इन लोगों के साथ बाहमी रजामंदी से ये मामला तय पाया कि आम मुसलमान जितनी जकात अदा करते हैं ये बनु तगलिब वाले उससे दुगनी जकात अदा करेंगे। बनु तगलिब वाले दुगनी जकात अदा करेंगे, यानी मुसलमान पर तो साल के अंदर माले तिजारत के अंदर 2.5% जकात आती है और ये 5% अदा करेंगे। तो कहते हैं फसलुन व नसारा बनी तगलिबा, और बनु तगलिब के जो ईसाई हैं युखदु मिन अमवालिहिम लिया जाएगा इनके मालों में से, ज़िअफु मा युखदु मिन अलमुस्लिमीना दुगना उसका जो मुसलमानों से लिया जाता है, मीना ज़कती यानी के ज़कात, यानी के ज़कात, ये मीना ज़कात ये बयान है मा युखदु मिन अलमुस्लिमीन का, और मैंने आपको बतलाया कि तर्जमे के अंदर यह बयान को आप मुबैन की जगह ले जाया करें तो फिर बेहतरीन तर्जमा हो जाएगा। जैसे अब हम देखो मायूखजू की जगह हम जकात ले आएंगे, कहते हैं कि बनु तगलिब के जो ईसाई हैं युखदु मिन अमवालिहिम उनके मालों से लिया जाएगा, ज़िअफु मा युखदु मिन अलमुस्लिमीन मिन अज़्ज़काती उस जकात का दुगना जो मुसलमानों से ली जाती है। आगे देखिए लिअन्ना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम सालहहुम अला जालिका, इसलिए क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने उनसे सुलह फरमाई इसी पर, बिमहजरिम मिन सहाबती रजी अल्लाह तआला अन्हुम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में, मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया, व युखदु मिन निसाइहिम और ये दुगनी जकात इनकी औरतों से ली जाएगी, वला युखदु मिन सिबियानिहिम लेकिन इनके बच्चों से नहीं ली जाएगी। भाई क्या वजह है औरतों से ली जाएगी और बच्चों से नहीं ली जाएगी, कहते हैं लिअन्ना सुलह वक़अ अला सदक़तिल मुज़ाअफ़ति, इसलिए क्योंकि सुलह वाक़े हुई थी अला सदक़तिल मुज़ाअफ़ति दुगनी जकात पर, सुलह वाकई हुई थी दुगनी जकात पर, वह सदकत उत्तजिबु अलैहिन्ना और जकात औरतों पर वाजिब होती है, दून सिबयानिना के बच्चों पर, फकदल मुजाअफु तो इसी तरह वो जिसको दुगना किया गया है, वो माल जिसको दुगना किया गया है वो भी सिर्फ औरतों पर वाजिब होगा क्योंकि जकात सिर्फ औरतों पर वाजिब होती है, बच्चों पर जकात नहीं, तो वो जो दुगना किया गया है वो बच्चों पर भी वाजिब नहीं होगा। याद रखो ये सदका जो है सदका वो माल है जो अल्लाह के लिए दिया जाए, और ये दो किस्म पर हो सकता है। एक सदका वाजिबा है जैसे जकात है, या जैसे उशर है, तवज्जो है, तो जकात को भी सदका कहते हैं, और आम जो वैसे अल्लाह के रास्ते में कोई शख्स अपनी तरफ से माल दे उसको भी सदका कहते हैं भाई। अल्बत्ता जकात जो है वो है सदका वाजिबा, वो वाजिब है, उसका अदा करना जरूरी है, और बाकी आम जो अल्लाह के रास्ते में कोई दे वो सदका गैर वाजिबा है भाई। आगे देखिए, وقال زفر رحمه الله تعالى لا يؤخذ من نسائهم ايضا, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बनु तगलीब की औरतों से भी नहीं लिया जाएगा, जैसे इनके बच्चों से नहीं लिया जाता वो दुगना किया हुआ माल, इसी तरह इनकी औरतों से भी नहीं लिया जाएगा। वह हुआ कौल शाफी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी यही फरमाते हैं। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि बेशक वो बनु तगलीब वाले इसको जकात कहते थे, लेकिन हकीकत में ये जिजिया ही है भाई, और जब जिजिया है तो जिजिया तो सिर्फ बालिग मर्दों पर जो लड़ाई के अहल होते हैं उन पर जिजिया वाजिब होता है, औरतें और बच्चे तो जंग ही नहीं कर सकते, लिहाजा उन पर जिजिया भी वाजिब नहीं होता। तो यहां भी इन बनु तगलीब की औरतों और बच्चों पर जिजिया वाजिब नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वकाल अजुफर रहमहुल्लाह ताला ला युखदु मिन निसाइहिम अयज़ान, और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये उनकी औरतों से भी नहीं लिया जाएगा जैसे उनके बच्चों से नहीं लिया जाता। वह हुआ कौलु शाफिई रहमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी। लिअन्नहु जिज़्यतुन फिल हकीकति, इसलिए क्योंकि यह हकीकत में जिजिया ही है। अला मा काल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वजह से जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाज़िही जिज़्यतुन, कि ये जिजिया है। फसमूहा माशी तुम, तो तुम इसको नाम दे दो जो तुम चाहो। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी क्या फरमाया कि ये जिजिया ही है, तुम इसको जो भी नाम दे दो। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु जिज़्यतुन फिल हकीकति अला मा काल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि ये हकीकत में जिजिया ही है, उस वजह से जो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाज़िही जिज़्यतुन फसमूहा माशितुम, कि ये जिजिया ही है तो तुम इसको जो भी नाम दे दो। फसमूहा भाई, सम्मा युसम्मी तस्मिया, तो अगर माजी हो तो कैसे पढ़ेंगे, सम्मा सम्माया सम्माउ भाई, और अगर अमर हो तो अमर किससे बनेगा, तू सम्मी से, तो अमर क्या होगा, सम्मी सम्मिया सम्मू, तो ये अमर का सीगा है। फसम्मूहा माशी तुम, तो तुम इसको नाम दो जो भी तुम चाहो। व लिहादा तुसरफु मसारिफ अल जिजियती, और इसीलिए इसको जिजिये के मसारिफ में खर्च किया जाता है। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, एक दलील जिक्र कर दी कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ये जिजिया ही है, दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं कि ये माल जिजिया ही है इसलिए क्योंकि इसको जिजिया के मसारिफ पर ही खर्च किया जाता है। जैसे जिजिया आम मुसलमानों की मसलहतों पर खर्च किया जाता है, इसी तरह यह माल जो इनसे लिया गया है यह भी उसी जिजिये के मसारिफ पर खर्च किया जाता है। अगर यह जकात होती तो जकात तो सिर्फ फुकारा पर खर्च की जाती है भाई। तो कहते हैं वलिहादा तो सरफ मसारिफ अल जिजियती, और इसीलिए इसको जिजिये के मसारिफ पर खर्च किया जाता है। वला जिजियता अल निस्वानी, और औरतों पर तो जिजिया नहीं है, लिहाजा बनु तगलीब की औरतों पर जिजिया नहीं आएगा। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहु मालूम वजब बिस्सुल्ह, कि यह ऐसा माल है जो सुलह की वजह से वाजिब हुआ है। वल मरअतु मिन अहली वुजूब मिस्लिही अलैहा, और औरत भी इस बात की अहल है कि उस पर इस जैसे माल को वाजिब किया जाए। इस जैसे माल को औरत पर वाजिब किया जा सकता है, जिजिया तो औरत पर वाजिब नहीं किया जा सकता, लेकिन यह माल तो सुलह की वजह से आया था, और सुलह की वजह से जो माल आए वह औरत पर भी वो वाजिब किया जा सकता है। तो कहते हैं हमारी दलील यह है कि यह माल सुलह की वजह से वाजिब हुआ है। वल मरअतु मिन अहली वुजूब मिस्लिही अलैहा, और औरत भी इस बात की अहल है कि उस पर इस जैसे माल को वाजिब किया जाए। वल मसरिफु मसालिहुल मुस्लिमीना, इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने दलील दी थी, ये जो माल लिया गया है ये जिजिया के मसारिफ पर खर्च किया जाता है, ये दलील है इस बात की कि ये जिजिया है। हम कहते हैं कि मसरफ की वजह से इसका जिजिया होना साबित नहीं होता, मुसलमानों की मसलहत के कामों पर ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बैतुल माल का माल है, और बैतुल माल का माल मुसलमानों की मसलहतों के लिए ही होता है, और बैतुल माल में सिर्फ जिजिया नहीं आता बल्कि बैतुल माल के अंदर खराज भी आता है, बैतुल माल के अंदर माले फै भी आता है, वो माल जिसे बगैर लड़ाई के मुसलमान हासिल कर लें। इसी तरह बैतुल माल के अंदर वो माल भी आता है जो कुफार बादशाह मुसलमानों के खलीफा को तोहफे के तौर पर भेजें। तो मालूम हुआ ये जो माल लिया गया ये बैतुल माल का माल है, और बैतुल माल में सिर्फ जिजिया ही नहीं आता, और भी माल आते हैं, और उन सब का मसरफ यही है कि उसको मुसलमानों की मसलहतों के कामों पर खर्च किया जाए। तो लिहाजा ये माल जो बनू तगलीब वालों से लिया गया है ये जब जिजिया के मसारिफ पर खर्च किया जाए तो इससे इसका जिजिया होना साबित नहीं होता, इसलिए क्योंकि यह मसरफ तो सिर्फ जिजिया का नहीं है बल्कि यह मसरफ तो खराज का भी है। इसी तरह वो मालिफ है जो बगैर लड़ाई के मुसलमान हासिल करें उसका भी यही मसरफ है, लिहाजा इसका मसरफ जिजिये वाला होने से यह साबित नहीं होता कि यह जिजिया है, क्योंकि यह मसरफ तो और मालों का भी है भाई। तो कहते हैं वल मसरिफु मसालिहुल मुस्लिमीना, और इस माल का जो मसरफ है वो मुसलमानों की मसलहतें हैं। लिअन्नहु मालु बैतिल माली, इसलिए क्योंकि ये बैतुल माल का माल है। वज़ालिका ला यख्तसु बिल जिज़्यति, और ये बैतुल माल का जो माल है वो जिजिया के साथ खास नहीं है। बैतुल माल का माल जिजिया के साथ खास नहीं है, सिर्फ जिजिया ही नहीं आता, उसमें और भी माल आते हैं, और वो सब किस पर खर्च होते हैं? मुसलमानों की मसलहतों पर। भाई बात समझ में आ गई। तो वज़ालिका ला यख्तसु बिल जिज़्यति, और ये बैतुल माल का जो माल है ये जिजिया के साथ खास नहीं, इसमें और भी माल आते हैं। और आप चाहें तो जालिका के जरिए इशारा कर दें वो जो पीछे मसरिफ आया था, वज़ालिका ला यख्तसु बिल जिज़्यति, और ये जो मसरफ जिक्र किया गया मुसलमानों की मसलहतें, ये सिर्फ जिजिया के साथ खास नहीं है, और भी माल मुसलमानों की मसलहतों पर लगाए जाते हैं, लिहाजा सिर्फ इसके मसरफ की वजह से इसको जिजिया करार नहीं दिया जाता, क्योंकि और माल भी इस तरह के हैं भाई, तो मसरफ की वजह से इसका जिजिया होना साबित नहीं होता भाई। तो कहते हैं वज़ालिका ला यख्तसु बिल जिज़्यति, और ये जिजिया के साथ खास नहीं है। अला तारा अन्नहु ला युरा फीही शराइतुहा, क्या आप देखते नहीं कि इसके अंदर जिजिये की शराइत की रियायत नहीं रखी जाती? भाई जिजिये के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं गुज़श्ता से पैवस्ता सबक के अंदर कि जिम्मी अगर अपने नाइब और वकील के हाथ जिजिया भेजे तो वह जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस जिम्मी को पाबंद किया जाएगा कि वह खुद आकर जिजिया अदा करे, और इजलाल के तरीके पर जिजिया उसे वसूल किया जाएगा कि वो खड़े होकर जिजिया देगा और वसूल करने वाला वो इमाम या नाइब बैठकर वसूल करेगा। जबकि बाज रिवायात में ये है कि उसको ग्रेबान से पकड़कर हिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ए जिम्मी जिजिया अदा कर, या ए अल्लाह के दुश्मन जिजिया अदा कर। मालूम है जिजिया के अंदर ये शराइत है, और ये जो बनू तगलीब वालों से माल वसूल किया जाता है उसके अंदर यह शराइत नहीं। मालूम हुआ यह जिजिया नहीं है भाई, ये माल सुलह की वजह से है। तो कहते हैं अला तारा अन्नहु ला युरा फीही शराइतुहा, क्या आप देखते नहीं कि इस माल के अंदर जिजिये की शराइत की रियायत नहीं की जाती? आगे देखिए वयूज़ऊ अला मौला तगलबील खराजु अयल जिजियतु व खराजुल अर्ज़ बिमंज़िलति मौला कुरैशी। भाई मौला जिस तरह आका को कहते हैं अरबी जुबान में, इसी तरह वो गुलाम जिसको आजाद कर दिया जाए उसको भी मौला कहते हैं। मसलन जैद ने अपने एक गुलाम को आजाद कर दिया तो ये गुलाम जो है ये जैद का मौला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौला, यानी जैद का आजाद करदा। अब यहां से साहिब हिदाया जो है वो बनु तगलीब के जो मौला हैं उनका हुक्म बयान फरमा रहे हैं कि बनु तगलीब वाले अगर अपने किसी गुलाम को आजाद कर दें तो उसका क्या हुक्म है। बनु तगलीब वाले जो हैं उनसे तो जिजिया नहीं लिया जाता था, उनसे तो दुगनी जकात ली जाती है, तो क्या इनके आजाद करदा गुलाम का भी यही हुक्म है? क्या उससे भी जिजिया नहीं लिया जा सकता? तो आपको बतलाएंगे नहीं, कि तगलीबी का जो मौला है, तगलीबी का जो आजाद करदा गुलाम है उससे जिजिया लिया जा सकता है। इसी तरह अगर उसके पास कोई जमीन है तो उससे खराज भी लिया जा सकता है। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे कुरैशी का आजाद करदा गुलाम, कोई कुरैशी है और उसका आजाद करदा एक ईसाई गुलाम है, तो कुरैशी से तो जिजिया नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके आजाद करदा गुलाम से जिजिया लिया जा सकता है क्योंकि वो ईसाई है भाई। तो मालूम हुआ तगलीबी का आजाद करदा गुलाम जो है वो इसी तरह है जैसे कुरैशी का आजाद करदा गुलाम। तो कहते हैं वयूज़ाउ अला मौला तगलीबी यिल खराजू, और मुकरर किया जाएगा तगलीबी के आजाद करदा गुलाम पर अल खराजू खराज को, खराज को। और आगे आ रहा है वह खराज उल अर्जी, जमीन का खराज, उसको अलग जिक्र कर रहे हैं। मालूम हुआ यह जो खराज का लफ्ज आया इससे मुराद जिजिया है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जिजिये को भी खराज कहते हैं। वो जो काफिरों की जमीन पर टैक्स लगाया जाए उसको भी खराज कहते हैं, और जो काफिरों पर जिजिया लाजिम किया जाए उसको भी खराज कहते हैं। अलबत्ता फर्क यह है कि वो जो जमीन पर टैक्स लगाया गया है उसको खराजुल अर्ज कहते हैं, और काफिर की जात पर जो जिजिया मुकरर किया गया है उसको खराजुल रस कहते हैं। तो मालूम हुआ ये जो पहले खराज का लफ्ज आया इससे खराजुल रस यानी जिजिया मुराद है। तो कहते हैं वयूज़ाउ अला मौला तगलबी यिल खराजू, और तगलीबी के आजाद करदा गुलाम पर खराज मुकरर किया जाएगा। अयिल जिजियतु, साहिब हिदायत तफसीर कर रहे हैं कि यहां खराज से मुराद जिजिया है, तगलीबी के मौला पर जिजिया मुकरर किया जाएगा। व खराजुल अर्जी, और जमीन का खराज भी, बिमंजिलति मौलल कुरैशी, कुरैशियुन ये निस्बत है कुरैश की तरफ, जैसे लाहौरी उनका क्या माना लाहौर वाला, तो कुरैशी उनका माना कबीला कुरैश वाला। तो कहते हैं बिमन जिलती मौल अल कुरैशी, ये कुरैशी आदमी के मौला के दर्जे में, कुरैशी आदमी के मौला के दर्जे में, जैसे कुरैशी आदमी का जो मौला यानी उसका जो आजाद करदा गुलाम है उस पर जिजिया मुकरर किया जा सकता है, इसी तरह बनु तगलिब वाले के मौला पर भी जिजिया मुकरर किया जा सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वयूज़ाउ अला मौला तगलबी यिल खराजु अयिल जिज़्यतु व खराजुल अर्ज बि मंज़िलति मौलल कुरैशी, और तगलबी के मौला पर खराज यानी जिजिया और खराजुल अर्ज मुकरर किया जाएगा, बि मंज़िलति मौलल कुरैशी, कुरैशी के मौला के दर्जे में, यानी जैसे उस पर ये दोनों चीजें मुकरर की जा सकती हैं, खराज भी और जिजिया भी भाई। वकाल जुफर रहमहुल्लाह ताला युज़ाअफ, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मौला तगलीबी पर इन चीजों को दुगना किया जाएगा, जैसे तगलीबी पर ज़कात दुगनी की जाती थी इसी तरह उनके जो आजाद करदा गुलाम है उन पर उनसे जिजिया और खराज भी दुगना करके वसूल किया जाएगा। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्लाह ताला युज़ाअफ, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मौला तगलबी के लिए इन चीजों को दुगना किया जाएगा, लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की वजह से कि आपने फरमाया इन मौलल कौमी मिनहुम, कि किसी कौम का जो आजाद करदा होता है वो उन्हीं में से होता है। इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि किसी कौम का आजाद करदा उसी कौम वालों के हुक्म में होता है, तो जब यहां बनू तगलीब वालों पर जकात दुगनी है तो इनके आजाद करदा गुलामों पर जिजिया और खराज भी दुगना होगा। तो कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम इन मौलल कौम मिनहुम, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के फरमाने मुबारक के कि आपने फरमाया कि किसी कौम का मौला उन्हीं में से होता है, अला तारा अन्न मौलल हाशिमी युल हकु बिही फी हक हुरमति सदका, ये इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील चल रही है अभी, वो फरमाते हैं कि आप देखते नहीं कि हाशिमी को जकात देना हराम है, हाशमी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाला है आप जानते हैं उसको जकात देना हराम है, तो जिस तरह हाशमी को जकात देना हराम है इसी तरह याद रखो हाशमी का जो मौला है यानी वो गुलाम जिसको कोई हाशमी आजाद कर दे उसका भी यही हुक्म है, उसे भी जकात देना हराम है। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो हदीस के अंदर आया कि किसी कौम का आजाद करदा उन्हीं कौम वालों में से होता है, चुनांचे आप देखते हैं कि जिस तरह हाशमी को जकात देना हराम है इसी तरह हाशमी के मौला को भी जकात देना हराम है। कहते हैं अल्लाह तारा के आप देखते नहीं अन्न मौलल हाशिमी ये कि हाशिमी का जो आजाद करदा है युल हकु बिही उसको हाशिमी के साथ मिलाया जाता है फी हक हुरमति सदकती जकात के हराम होने के हक में। वलना अब हमारी दलील आ गई, वलना हमारी दलील यह है कि अन्नहादा तखफीफुन, भाई हमारी दलील का खुलासा यह है कि हमारे नजदीक एक है तखफीफ यानी किसी मामले में नरमी कर दी जाए उसको हल्का कर दिया जाए और एक है तशदीद यानी किसी मामले में सख्ती कर दी जाए। तो हम कहते हैं कि अगर तशदीद वाला मामला है यानी एक चीज के अंदर आका पर तशदीद है और सख्ती है तो उसके आजाद करदा गुलाम पर भी वो सख्ती होगी, और अगर आका के लिए एक बात में तखफीफ है और नरमी है तो उसके आजाद करदा गुलाम के लिए फिर वो नरमी नहीं होगी। तवज्जो है, हम कहते हैं एक है तशदीद और एक है तखफीफ। अगर तशदीद वाला मामला है तो आजाद करदा गुलाम का भी वही हुक्म होगा जो इसके आका का है, आका पर तशदीद है तो आजाद करदा गुलाम पर भी तशदीद होगी, और अगर नरमी वाला मामला है यानी एक चीज के अंदर आका के लिए नरमी है तो उसके आजाद करदा गुलाम के लिए वो नरमी नहीं होगी। तो हम कहते हैं ये जो बनु तगलिब वालों से दुगनी ज़कात ली जा रही है ये नरमी है, ये उनके हक में तखफीफ है। जब ये नरमी है तो इनके आजाद करदा गुलाम के लिए ये नरमी साबित नहीं होगी। तो सवाल पैदा होता है ये नरमी कैसे है, तो इनसे दुगनी ज़कात ली जा रही है, तो जवाब ये कि ये नरमी है जब ही तो वो ये दुगनी ज़कात देने पर राजी हो गए थे और जिजिया देने पर राजी नहीं थे, मालूम हुआ इसमें नरमी है। वजह ये है कि जिजिया जो वसूल किया जाता है वो जिल्लत के तरीके पर वसूल किया जाता है, आप पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर जिम्मी को पाबंद किया जाता है कि वो उसको खुद आकर देना पड़ेगा और वो खड़े होकर अदा करेगा और वसूल करने वाला बैठा होगा, या जिम्मी को गरीबान से पकड़कर हिलाया जाएगा कि ए जिम्मी जिजिया आता कर, तो जिजिया जो है वो तो जिल्लत के तरीके पर लिया जाता है और ये जो माल लिया जा रहा है ये उस तरीके पर नहीं है, लिहाजा मालूम हुआ इसके अंदर नरमी है। तो मालूम हुआ जब ये नरमी वाला हुक्म है ये दुगनी ज़कात लेना, ये जब नरमी वाला हुक्म है तो बनु तगलिब के जो आजाद करदा गुलाम हैं उनके लिए ये नरमी वाला हुक्म साबित नहीं होगा। तो कहते हैं वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहादा तखफीफ, उनकी जो दुगनी ज़कात का लेना है यह तखफीफ है। वल मौला ला युल्हकु बिल असल फीही, और आजाद करदा को असल यानी आका के साथ नहीं मिलाया जाता फीही इस नरमी के अंदर, आजाद करदा गुलाम को आका के साथ नरमी के अंदर नहीं मिलाया जाता। वलिहाजा तू जाउल जिजियतु अला मौलल मुस्लिमी इदा कान नसरानिया, कहते हैं इसी वजह से अगर एक मुसलमान है वो अपने किसी ईसाई गुलाम को आजाद कर देता है तो ये जो आजाद करदा ईसाई गुलाम है इससे जिजिया वसूल किया जाएगा, हालांकि इसका जो आका है वो मुसलमान है उससे जिजिया वसूल नहीं किया जा रहा। तो मुसलमान आका से जिजिया वसूल नहीं किया जा रहा, ये नरमी है ये तखफीफ है, और आका के लिए जो तखफीफ साबित हो वो उसके आजाद करदा गुलाम के लिए साबित नहीं होती। तो आका से तो जिजिया नहीं लेंगे लेकिन वो उसके आजाद करदा ईसाई गुलाम से जिजिया लेंगे। कहते हैं वलिहादा तू जाउल जिजियतू, और इसीलिए जिजिया मुकरर किया जाता है अला मौलल मुस्लिमी मुसलमान के आजाद करदा गुलाम पर इजा कान नसरानिया, जब वो आजाद करदा गुलाम ईसाई हो बिखिलाफ हुरमत सदका। यहां से इमाम जुफर हमला के कयास का जवाब दे रहे हैं। इमाम जुफर हमला फरमाते थे जैसे हाशमी को जकात देना जायज नहीं इसी तरह उसके आजाद करदा गुलाम को भी जकात देना जायज नहीं है, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वह हुरमत का मसला है, जकात के हराम होने का मसला है, और हुरमतें जो हैं वो शुबे से भी साबित हो जाती हैं, किसी चीज का हराम होना शुबे की वजह से भी साबित हो जाता है, लिहाजा जब हाशमी को जकात देना हराम है तो इसके आजाद करदा गुलाम को भी जकात देना हराम होगा। तो कहते हैं बिखिलाफ हुरमति सदकती, बखिलाफ जकात का हराम होना लिअन्न अल-हुरुमाति तस्बुतु बिशुबहाती, इसलिए क्योंकि हुरमतें जो है शुबों से साबित हो जाती हैं। फउल्हिकल मौला बिल हाशिमी ये, तो लिहाजा आजाद करदा गुलाम को भी उसके हाशमी आका के साथ मिलाया जाएगा फी हकी ही उस हुरमत के हक में। जिस तरह हाशमी के लिए जकात हराम तो उसके आजाद करदा के लिए भी जकात हराम होगी भाई, क्योंकि हुरमत जो है वो शुबे से भी साबित हो जाती है भाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि आका के लिए जकात लेना हराम है तो उसके आजाद करदा के लिए भी जकात लेना हराम होगा, यानी इसमें शुबा आ गया और शुबे की वजह से भी हुरमत साबित हो जाती है, तो लिहाजा हाशमी के आजाद करदा गुलाम के लिए भी जकात लेना हराम होगा भाई। तो एक जवाब तो गुजर गया, एक जवाब तो गुजर गया कि ये हाशमी के मौला को जकात देना हराम है क्योंकि ये हुरमत का मसला है और हुरमत जो है शुबे से भी साबित हो जाती है, और नीज इसलिए भी कि हाशमी पर जकात का हराम होना इसमें तशदीद है, सख्ती है, हाशमी चाहे गरीब ही क्यों ना हो फिर भी उसको जकात नहीं दी जा सकती, तो मालूम हुआ इस जकात ना देने में सख्ती है भाई। और आका पर जब एक हुक्म के अंदर सख्ती हो तो उसके गुलाम के लिए भी वो सख्ती साबित हो जाती है, लिहाजा हाशमी को जकात देना जायज नहीं तो उसके मौला यानी आजाद करदा गुलाम को भी जकात देना जायज नहीं है भाई। आगे देखिए, वला यल्जम मौलल गनी ये हैसुला तहरुम अलैहि सदका। यहां से एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। साहिब हिदाया पर एतराज होता है कि आपने हमें बताया कि हुरमत जो है वो शुबे से भी साबित हो जाती है, इसीलिए हाशमी के मौला को जकात देना जायज नहीं, फिर तो एक मालदार आका है उसने अपना गुलाम आजाद कर दिया, तो अब ये जो मालदार आका है इसको तो जकात देना जायज नहीं, जकात देना जायज नहीं, मालूम हुआ जकात देना इसको हराम है, तो लिहाजा इसके गुलाम चाहे गरीब ही क्यों ना हो फिर भी उसको जकात देना हराम होना चाहिए, क्योंकि हुरमत जो है वो शुबे से साबित हो जाती है। जब आका मालदार है तो उसके लिए जकात लेना हराम है, तो उसके आजाद करदा गुलाम का भी यही हुक्म होना चाहिए, उसके लिए भी जकात लेनी हराम होनी चाहिए। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप मालदार आदमी के मौला को लेकर एतराज नहीं कर सकते, वजह यह कि वो जो मालदार आदमी है वो मजमूई एतबार से जकात का अहल है, वो जो मालदार आदमी है वो मजमूई एतबार से जकात का अहल है, लेकिन उसको जकात दे नहीं सकते क्योंकि एक मानेअ आ गया और वो उसकी मालदारी है। ये मालदार आदमी अगर मालदार ना होता तो ये भी जकात का अहल होता, इसको भी जकात दी जाती, तो मालूम हुआ मालदार को जकात नहीं दी जा सकती, वहां एक मानेअ आ गया और वो उसकी मालदारी है, लेकिन उसके आजाद करदा गुलाम के अंदर तो ये मानेअ मौजूद नहीं, वो तो मालदार नहीं है, लिहाजा वहां जकात दी जा सकती है। तवज्जो है, फिर सुनो, एतराज यह होता था कि आपने हमें बताया कि हाशमी को जकात नहीं दी जा सकती तो उसके मौला को भी जकात नहीं दी जा सकती क्योंकि यह हुरमत का मसला है और हुरमत शुबे से भी साबित हो जाती है, फिर तो मालदार आका को जकात नहीं दी जा सकती तो उसके आजाद करदा गुलाम को भी जकात देना जायज नहीं होना चाहिए भाई। तो उसका जवाब दिया कि नहीं, मालदार आदमी के मौला को लेकर आप एतराज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मालदार आदमी अपनी जात के एतबार से वो जकात का अहल है, अलबत्ता वहां सिर्फ एक मान्य आ गया था कि वो मालदार है, लेकिन ये मान्य उसके मौला यानी आजाद करदा गुलाम में तो मौजूद नहीं, लिहाजा उसको जकात दी जा सकती है, जबकि इसके मुकाबले में जो हाशमी था वो तो सिरे से जकात का अहल ही नहीं है, वो तो चाहे गरीब ही क्यों ना हो फिर भी उसको जकात देना जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला यल्जम मौलल गनी ये हैसु ला तहरुम अलैहि सदका, वला यल्जम मौलल गनी ये, और इस पर मालदार के आजाद करदा का एतराज लाजिम नहीं आता, हैसु ला तहरुम अलैहि सदका, क्योंकि उस पर तो जकात हराम नहीं है, मालदार आदमी के आजाद करदा पर तो जकात हराम नहीं है, तो उसको लेकर आप एतराज नहीं कर सकते। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वला यल्जम मौलल गनी ये हैसु ला तहरुमु अलैहि सदका, और इस पर मालदार के आजाद करदा का एतराज लाजिम नहीं आता क्योंकि उस मालदार के आजाद करदा पर तो जकात हराम नहीं है, लिअन्नल गनी यमीन अहलिहा, इसलिए क्योंकि वो मालदार जो है वो भी जकात का अहल है, यानी मजमूई एतबार से वो जकात का अहल है, वह इन नमल गीना मान्य उन, और सिर्फ उसकी मालदारी जो है वो मान्य है, अगर वो मालदार ना होता तो वो जकात का मुस्तहिक होता। तो कहते हैं वह इन नमल गीना मानेउन, और मालदारी ही माने है, वलम यूजद फी हक इल मौला, और उसके आजाद करदा के हक में तो ये मालदारी नहीं पाई गई। अमल हाशिमी यू, बाकी जो हाशिमी है, फलैसा भी अहलिन लिहादिही सिलति असला, सिला कहते हैं अता और इनाम को। कहते हैं अमल हाशिमी यू, बाकी हाशिमी जो है, फलैसा भी अहलिन लिहादिही सिलति असला, वो इस अता का अहल नहीं है, असलन ऐ कतअन। हाशमी जो है वो तो इस अता का यानी जकात का अहल ही नहीं है कतई तौर पर। तो कहते हैं अम्मल हाशिमी यू फलैसा भी अहलिन लिहादिही सिलति असला, और बाकी हाशिमी जो है वो इस अता यानी जकात का कतई तौर पर अहल ही नहीं है। लिअन्नहु सीना लिशरफिही व करामतिही अन औसाखिन नास, सीना भाई स्वाद के साथ है, साना या सोनू का माना होता है बचाना, हिफाजत करना। आप जानते हैं ये जो जकात है ये लोगों के माल का मैल कुचैल है भाई, तो हाशिमी को इस मैल कुचैल से बचाया गया है, इसलिए उसको जकात देना जायज नहीं भाई। कहते हैं लिअन्नहु सीना, इसलिए क्योंकि हाशिमी को बचाया गया है, लिशराफी ही व करामती ही, उसके मुअज्जज होने और उसकी बुजुर्गी की वजह से, अन औसाखिन नासी, लोगों के मैल कुचैल से, फउल्हिका बिही मौलाहू, लिहाजा हाशिमी के मौला को भी उसी के साथ मिला दिया गया। हाशमी का जो मौला है, जो उसका आजाद करदा है, उसको भी उसके उस हाशमी के साथ मिला दिया गया हुरमत जकात में। बात समझ में आ गई। और नीज याद रखना वो जो हदीस जिक्र हुई थी हम उसका भी जवाब देते हैं। हदीस में आया था इन न मौलल कौम मिन हूं, किसी कौम का जो आजाद करदा होता है वो उन्हीं में से होता है, तो हम उसका जवाब देते हैं कि हम भी इस हदीस पर अमल करते हैं। अलबत्ता ये हदीस जो है अपने उमूम पर जारी नहीं है, यानी वो जो आजाद करदा है वो हर एतबार से उस कौम वालों में से नहीं होता। जैसे कफाअत भाई, जैसे कफात किसी के हम पल्ला और बराबर होना, तो हदीस में क्या आया किसी कौम का आजाद करदा उन्हीं लोगों में से होता है। हालांकि बिल इतफाक ये गुलाम जिसको आजाद किया गया है ये रुतबे और मकाम के एतबार से उनका हम पल्ला और बराबर का नहीं, उनके बराबर और हम पल्ला नहीं है। मालूम हुआ यह हदीस अपने उमूम पर जारी नहीं है, बल्कि इससे मुराद मदद और नुसरत है कि किसी कौम का आका उन्हीं लोगों में से होता है, यानी ये बाहम एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक कौम वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी तरह किसी कौम का आजाद करदा जो है वो भी उन्हीं में से है, यानी वो एक दूसरे की मदद करते हैं। बात समझ में आ गई। और नीस हमारे नजदीक इस हदीस के अंदर जो आजाद करदा को कौम के साथ करार दिया गया है वो तशदीद के अंदर है कि कोई सख्ती वाला मामला हो तो किसी कौम का आजाद करदा आदमी उन्हीं में से होगा, लेकिन नरमी के अंदर यह हुकाम नहीं है भाई। आगे देखिए قال وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل حرب إلى الإمام والجزية يصرف في مصالح المسلمين। यहां से खराज और जिजिया वगैरह के मसारिफ जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। मसरफ पहले ही जिक्र हो चुका कि जिजिया और खराज वगैरह ये मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किए जाएंगे। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा जबाहुल इमाम भाई, जबा यजबू जबवन, और इसी तरह जबा यज भी जबयन, यानी ये वावी भी है और याई भी है, दोनों तरह अरबी में इस्तेमाल होता है, जबा यजबू जबवन और जबा यज भी जबयन, और इसका माना है इकट्ठा करना और वसूल करना। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा जबाहुल इमाम, और वो माल जिसको इमाम जमा कर ले इकट्ठा कर ले, मीनल खराज यानी के खराज जो है, वमिन अमवाली بنی تغلیبا، اور یعنی کہ بنو تغلیب کے جو مال ہیں، وما اہداہ اہل الحرب الی امامی، اور وہ جو اہل حرب ہدیہ دیں امام کو، ان کے بادشاہ کو تحفہ بھیجتے ہیں ہمارے امام کو، والجزیتو، اور اسی طرح جزیہ جو ہے، یصرف فی مصالح المسلمین، ان کو خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی مصلحتوں میں، کا سد سغور، سد ان کا معنی ہے بند کرنا، سغور سا کے ساتھ ہے بھائی، سغور جمع ہے صغر ان کی، اور صغر کہتے ہیں سرحد کو، وہ جو دارالاسلام اور دارالحرب کے درمیان سرحد ہے اس کو صغر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مال مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا، کسد سغوری، جیسے کہ سرحدوں کا بند کرنا، اس مال کو سرحدوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. بھئی کیا معنی سرحدوں کو بند کرنے کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ سرحدوں پر جو مسلمانوں کے لشکر وغیرہ موجود ہیں ان کی مدد کی جائے گی اس کے ذریعے. تو اس مال کو مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا، کسد سغوری، جیسے کہ سرحدوں کو بند کرنا ہے. وبنا القناطیری والجسوری، یاد رکھو بنا کا معنی ہے تعمیر کرنا، قناطر اور جسور یہ پلوں کو کہتے ہیں، قناطر جمع ہے قنطرا کی، یہ بھی پل کو کہتے ہیں، اور جسور جمع ہے جسر ان کی، اور یہ بھی پل کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ قنطرا اس پل کو کہتے ہیں جو اسی جگہ پر رہتا ہے، یعنی دریا پر ایک مستقل مضبوط پل بنا دیا گیا اس کو قنطرا کہیں گے، اور جسر عارضی پل کو کہتے ہیں جس کو ضرورت کے وقت ہٹایا بھی جا سکے، مثلا کشتیوں وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پل بنا لیا گیا، تو اب یہ عارضی پل ہے، جب اس کو ہٹانا ہو تو ہٹایا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وبنا القناطیری والجسوری، اور جیسے کہ مستقل اور عارضی پلوں کی تعمیر ہے اس کے اندر اس مال کو لگایا جائے گا. ویعطی قضات المسلمین، اور یہ مال عطا کیا جائے گا قضات المسلمین، مسلمانوں کے قاضیوں کو. وعمالهم، عمال جمع ہے عامل کی، یعنی وہ جو انتظامی کام کرنے والے ہیں، تو مسلمانوں کے جو عمال ہیں یعنی جو مملکت کے انتظامی کام سر انجام دینے والے کارکن ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَيُعْتَى قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَ، اور عطا کیا جائے گا مسلمانوں کے قاضیوں کو. وَعُمَّالُهُمْ، اور مسلمانوں کے انتظامی کارندوں کو. وَعُلَمَاؤُهُمْ، اور عطا کیا جائے گا مسلمانوں کے علماء کو. مِنْهُ، اس مال میں سے. مَا يَكْفِيهِمْ، اتنی مقدار جو ان کے لیے کافی ہو جائے، اتنی مقدار جو ان کے لیے کافی ہو جائے جس کے ذریعے وہ آرام سے اپنی گزر بسر کر سکیں. وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِيهِمْ، مقاتلہ بھائی وہ جو لڑنے والے ہیں مجاہدین اور غازی بھائی. وَزَرَارِيهِمْ، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، زراری جمع ہے ذریت کی، اولاد کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِيهِمْ، اور اسی میں سے دیا جائے گا وہ جو غازی ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں ان کا رزق، ان کا رزق اور خرچہ اسی میں سے دیا جائے گا. تو کہتے ہیں وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِيهِمْ، اور اسی میں سے مجاہدین اور ان کی اولاد کا رزق دیا جائے گا. لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، اس لیے کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے. فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کو پہنچا ہے بغیر لڑائی کے. بھائی وہ مال جو لڑائی سے مسلمان چھینتے ہیں وہ تو اس میں سے تو خمس نکالتے ہیں اور باقی مجاہدین میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ تو بیت المال کا مال ہے، یہ تمام مسلمانوں کے مصلحتوں پر خرچ کیا جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، اس لیے کیونکہ یہ مسلمانوں کو پہنچا ہے بغیر لڑائی کے. وَهُوَ مُعَدٌّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو بیت المال کا مال ہے یہ مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. وَهَؤُلَاءِ عَمَلَتُهُمْ، اور یہ سارے مسلمانوں کے کام کرنے والے ہیں، یہ جو قاضی اور انتظامی کارندے اور علماء ہیں یہ مسلمانوں کے کام کرنے والے ہیں، لہذا ان کی تنخواہیں اسی میں سے ادا کی جائیں گی. تو کہتے ہیں وَهَا أُولَاءِ عَمَلَتُهُمْ، और ये मुसलमानों के काम करने वाले हैं। वना फकतु जरारी अलल आबाई, यहां से वजह जिक्र कर रहे हैं कि गाजियों को तो इसमें से खर्चा देंगे, ये उनकी औलाद को क्यों खर्चा देंगे। कहते हैं वना फकतु जरारी अलल आबाई, और औलाद का जो खर्चा होता है वो उनके आबा पर होता है। फलाउ लम युअतू किफायतहुम, अगर इनको नहीं दिया जाएगा किफायतहुम, किफायत कहते हैं बकदरे जरूरत माल, तो कहते हैं फलाउ लम युअतू, अगर इनको न दिया जाए किफायतहुम इतना माल जो इनके लिए काफी हो, लहताजु इलल इक्तिसाबी, तो ये गाजी जो है मोहताज होंगे कमाई के, कि इनको काम काज करना पड़ेगा। वला यफरहून लिल किताली, और ये लड़ाई के लिए फारिग नहीं होंगे, फिर तो ये काम काज में मसरूफ हो जाएंगे, इसलिए मुजाहिदों को भी देंगे और उनकी औलाद को भी। भाई वह मम्मा तफी निस्फ सनती, भाई यहां से यह बतला रहे हैं कि ये जो गाजी वगैरह हैं अगर ये निस्फ साल में इनका इंतकाल हो जाए तो क्या फिर भी इनको ये अतिया दिया जाएगा या नहीं, तो कहते हैं नहीं, फिर इनको ये अतिया नहीं दिया जाएगा। यानी माना यह है कि फिर देना वाजिब नहीं है, अगर इमाम देना चाहे तो दे सकता है लेकिन देना वाजिब नहीं है। भाई कहते हैं वह मम्मा तफी निस्फ सनाती, और इनमें से जो निस्फ साल के अंदर मर गया, फला शै अलहू मिनल अताई, तो उसके लिए अता में से कुछ भी नहीं होगा। अता भाई वो जो वजीफा वगैरह दिया जाता है उसको अता कहते हैं। तो कहते हैं फला शै अलहू मिनल अताई, तो अगर वो साल के बीच में मर जाए तो उसके लिए अता में से कुछ नहीं होगा। लिअन्नहु नौउसिलतिन, इसलिए क्योंकि ये जो अता है ये भी एक किस्म का अतिया और इनाम है। वलैस बिदैनिन, और ये दैन नहीं है। वलिहादा सुम्मिया अताअन, और इसीलिए इसको अता कहते हैं। फला युम लकु कब्ल अल कब्जी, लिहाजा ये ममलूक नहीं होता कब्जे से पहले। वयस्कुतु बिल मौती, और ये साकित हो जाता है मौत की वजह से। व अहलुल अता फी ज़मानिना, और अहले अता जो है हमारे जमाने में, यानी जिनको बैतुल माल से माल देना चाहिए, मिसलुल काजी वल मुदर्रिसी वल मुफ्ती वल्लाहु आलम, जैसे कि काजी है और मुदर्रिस है और मुफ्ती है, वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। साहिब हिदायत फरमा रहे हैं हमारे जमाने में जो अहले अता हैं, यानी जिन पर बैतुल माल से माल खर्च करना चाहिए, वो जैसे कि काजी है या मुदर्रिस है या मुफ्ती वगैरह हैं। भाई बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।